ओम शांति।
हम तो बैठे मुझे रिवाइज करते थे।
बाबा ने कहा तुम बच्चों को बेहद, तुम बच्चों के दिल में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए था, क्योंकि बेहद के बाप से बेहद का बच्चा मिलता है।
तुम्हारे दिल में खुशी का नगाड़ा बजना
और डंका भी बजना चाहिए। डंका तो बाद
लास्ट मोमेंट में डंका बजेगा,
डंका बजेगा
वाह पिछाड़ी में वाह वाह निकलेगी। संतोष यहाँ जाओ,
यहाँ 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 माता इंद्र कोई नहीं, माता इंद्र पास में
पिछाड़ी में डंका, लास्ट मोमेंट में डंका बजेगा, पिछाड़ी में वाह वाह निकलेगी,
वाह वाह निकलेगी,
तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए 7 तारीख के मतलब। और क्योंकि तुमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिला है। दुनिया वाले ना राम को जानते हैं ना रावण को जानते हैं, ये है बेहद की कहानी।
बेहद की कहानी,
रावण बेहद का दुश्मन
ना उसके पीछे, वो भी गुप्त है, वो भी गुप्त, वो पिछले
और एक हफ्ते का मुरली माता जी
नीचे गई थी, बहुत गर्मी है,
ये थोड़ा मुरली का ही करते थे।
नीचे
गई
नहीं,
वो बताएंगे, मैं नीचे जाके मुरली पढ़ के आया, सुनाएंगे
उससे सुनाने वाले नीचे गए। जेल तुम हो, जेल बर्ड।
एक सप्ताह में सोमवार से लेकर आज के
7, 8, 9, 10, 11, 12 छह दिन का मुरली,
व्यक्त मुरली
पहले अव्यक्त बाद पहले 6 दिन की
साकार 6, 7, 8, 9, 10, 11 तुम हो जेल बर्ड।
जेल बोल के नष्ट मुहा की बात थी, अभी माता जी को याद आ गया।
मगर के चक्कर को छोड़ेंगे तो बाप समान शक्ति से,
अगर मगर के चक्कर को छोड़ना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। तो अगर मगर
चक्कर,
अगर की लिस्ट है एक मगर की लिस्ट, अगर की लिस्ट कौन कौन सी है संजय भाई, अगर की लिस्ट, अगर ये होता तो मैं ये कर पाता, अगर ये ऐसा होता तो नेगेटिव वाला, अगर अगर मैं क्या
अगर मुझे साधन मिल जाता तो मेरी साधन अच्छी हो जाती,
अगर मोबाइल से मुरली आ जाती रोज तो मुझे पूरा याद रहता, तो मोबाइल तो मुरली नहीं आती है।
अगर
अगर मुझे अपनी पर्सनल कॉपी मिलती तो सारे
मैं जानती
हूँ,
नहीं जानती तो बहुत
पॉइंट
बता देती।
अगर मैं बिजी नहीं होता तो
एकदम प्रेजेंट,
अगर मैं बिजी नहीं होता तो मुझे शायद मुरली पढ़ने को टाइम, अगर रात को लेट नहीं सोता तो जल्दी अमृत वेला कर लेता है ना। और मगर ये करता, मगर ये हो गया,
मगर ये हो गया,
मगर ये हो गया, ये तो करने वाला था पर मगर क्या करूं,
करना नहीं चाहता था मगर हो गया,
क्या करूं, बीमार पड़ गया बीच में, बीमारी आ गई। तो अगर मगर के चक्कर से मुक्त होना है तो स्वयं को शक्तिशाली बनाओ। क्वेश्चन मार्क जो है वो है उसका तेरा रास्ता है, उसमें क्या और क्यों, क्या और क्यों जब है तो टेंशन है, क्या और क्यों है टेंशन, तो तुमको रखना है अटेंशन स्व का, स्वयं का, समय समय स्व का, समय का और बाप के साथ का, दो बार फिर से वो मुरली
स्टीमर में बैठे हो,
बड़े स्टीमर में बैठे हो और पैर अगर नीचे रखा तो मगर मगर अजगर अजगर माया कच्चा खा जाएगी। तुम बड़े स्टीमर में बैठे हो, पाँव नीचे नहीं रखना है,
पवित्रता की गणना से तेरे धन्यवाद है सहज योगी
संपूर्ण पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी नहीं पर ब्रह्माचारी संकल्प बोल और कर्म में हर कदम में बाप समान ब्रह्माचारी केवल ब्रह्मचारी नहीं संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा महा बाबा ने की लास्ट मोमेंट में डंका बजेगा और
और था तुम बच्चे शरीर बनने की प्रैक्टिस अगर आ जाए तो सर बंधन कर्म बंधन क्लास हो जाए
निर्बंधन बंधन की विधि है
बंधन बंधन में बांधते है और एक बाप का संबंध
बंधन को कर्म मुक्त कराता है
बाप बच्चे बाप कहते हैं फादर कहते हैं पर बाप को जानते नहीं ये सबसे बड़ा अज्ञान है इससे बड़ा अज्ञान और दूसरा कोई नहीं क्या कहा अनाड़ी है
अनाड़ी।
उसके पहले कहा था बेसमझ जो पति थे वो बेसमझ है परसों कल बोला अनाड़ी खुशी का नगर सौ साल का इतना डेवलप हो गया बिजली आ गई सब है धन है तो माया ने सबको भ्रमित भरमा दिया तो कोई कहते हमारे पास धन है हमारे पास सब है बाबा कहते अच्छा तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है पर हम चले पर हम मेहनत कर रहे हैं सच्चे स्वर्ग में जाने की तो पुरुषार्थ को तेज रखो ढीला नहीं करो तो सतयुग में क्या कर सकते हैं सौ साल में दूसरा मुरली का फोन यहाँ अगर साइंस में सौ साल में इतनी उन्नति करनी तो सतयुग के हमारी पॉइंट हो गई नहीं माता जी सुधा मत बताओ
उनको बहुत पॉइंट आते
हाँ तो बताओ
अरे
तो आज से अटेंशन रखो
अभी
भी अटेंशन रखो अभी अभी बोलो नहीं सुधा माता
आज का बताओ
हाँ नहीं आज का नहीं आज का छोड़ के बताओ
वो भी सुन
लो माता जी आपका हो गया एक पॉइंट हो गया चक्कर अगर मगर हाँ
अतीन्द्रिय सुख नहीं पाएंगे तो ब्राह्मण कैसे
राजी हटियोग राजयोग नहीं सन्यासी हटियोग नहीं सिखला राजयोग नहीं सिखला सकते और बाप हटियोग नहीं सिखला सकते वो है हटके वैरागी हम है बेहतके वैरागी और चिमन भाई कंबाइंड स्वरूप वरदान था ना कंबाइंड स्वरूप अर्थात कदा सहज सहज योगी सहयोगी निरंतर योगी परिष्ठा उड़ति कला का अनुभव सारी चीजें उसमें थी और दूसरा आप क्या बोले थे करण करावन हार तो बाप है करण करावन हार तो बाप का स्थापना का इतना बड़ा जो कार्य है उसमें वो करण करावन हार है हम करण हार काम बाप का हाथ बच्चों का तो हाथ बढ़ाने का तुमको क्या मिला है गोल्डन चांस तुमको मिला है तो ये स्मृति सदा रहे कि वो करा रहा है हम कर रहे हैं तो करण हार इस स्मृति से हर कार्य में करावन हार साथ है करावन हार साथ है हर कार्य में करावन हार बड़े से कार्य बड़ा कार्य सहज होता है और बड़े से बड़ा कार्य है स्थापना का कार्य उसी स्लोगन का शुरुआती वहां से है कि बाप का सबसे बड़ा स्थापना का कार्य है तुम इसमें हाथ बढ़ाते हो तो ये तुमको गोल्डन चांस मिला होगा काम है बाप का और हाथ है बच्चों का ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा शंकर और विष्णु को बाप नहीं कह सकते ब्रह्मा को बाप कहेंगे और शिव को भी बाप कहेंगे क्योंकि वो शिव है निराकार शिव को कृष्ण को लोग पूछते हैं कि भगवान कौन है तो कहते हैं कृष्ण भगवान हुआ जो अरे कृष्ण तो छोटा बच्चा है परसों की मुरली चार अरे थे चार अरे थे एक तो ये अरे कि लोग कहते हैं कृष्ण है भगवान, अरे वो तो छोटा बच्चा है। लोग कहते हैं स्वर कहाँ है, तो ऊपर है। अरे 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 क्या लक्ष्मी नारायण का राज्य तो यहाँ हुआ तो स्वर्ग भी तो यही होगा। लोग कहते हमको साक्षात्कार नहीं हुआ। अरे पहले कभी किसको बोला था साक्षात्कार होना है, जो अभी मुझे बोलते हो साक्षात्कार की बात पहले कभी किसने बोली थी। तो तुम्हारा मोह है, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, अरे ये तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है।
ये पॉइंट आ गया ना याद आपको,
साक्षात्कार का हाथ नहीं रखना
है।
भारत को
मिलेगा,
उसी इसमें था
आपको मिलेगा मक्खन,
स्वराज्य का मक्खन। कौन सा मक्खन? उसी मुरली में था मक्खन। कौन सा? स्वराज्य का मक्खन, मक्खन है स्वराज्य का मक्खन। उसके बाद में था वही मुरली में घड़ी, घड़ी ऐसी बनाओ कि उस मुरली की शुरुआत थी, इस घड़ी को देख के बाप को बेहद की घड़ी याद आती है। मुरली की शुरुआत थी इस घड़ी को देख कर बड़ी, नहीं वो मुरली की शुरुआत देखो कैसी है, इस घड़ी को देख कर बाप को बेहद की घड़ी याद आती है। मतलब यहाँ की चीजें देखते हुए वो याद आती है। ये घड़ी देखा तो वो घड़ी याद है, ये झाड़ देखा तो सृष्टि वो झाड़ याद है, क्रिसमस ट्री। तो वो जो काटा है उसमें रेडियम लगाओ, उसमें सरल कलर डालो। हाँ मेरा मान कम हो जाए ऐसा नहीं, महान बच्चों को अपने सेंटर सेंटर को सेंटर पे बुलाओ तो सेवा वृद्धि को पाए।
अभिमान नहीं है कि मैं बुलाए तो
मेरा मान कम हो जाएगा इसको अगर बुलाएंगे तो। सम्मान दो, सम्मान चाहिए, मेरा सम्मान रखा, इसका मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा, इसका क्यों रखा। आज की मुरली में चार प्रश्न है नहीं है, मेरा सम्मान रखा, इसका मेरा क्यों नहीं रखा, इसका क्यों रखा। सम्मान दो, सम्मान चाहिए, सम्मान देने से नहीं, तुम देने वाले नहीं हो, लेने वाले नहीं हो, देने वाले हो। ये देने ये लेने की भावना भी क्या है, भिखारीपन, रॉयल भिखारीपन या रॉयल बेगरपन। इंग्लिश वर्ड को हिंदी जोड़ दिया बाबा ने, बेगर को बेगरपन,
बेगरपन रॉयल भिखारी।
फिर आगे संतोष भाई बोलो, याद है आपको पाप कर देंगे, और थोड़ा पावरफुल बोलो। हाँ बाप पर बलिया, जीते जी बाप पर बलिया जाना है तो बंधन कटेंगे। एक है बंधन कटने की दो विधि, एक तो बलिया जाना जीते जी और दूसरा दूसरा अशरीर पन।
हाँ
जी जी
बाबा ने बोला बाप का महिमा ही आपका सम्मान है।
रुको जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलेगा। फिर कल की एक मुरली थी उसमें बाबा ने कुछ ऐसा एक पैराग्राफ बोला वो याद है, वो एकदम मतलब सोमान मुक्त, सोमान नहीं थे उसके, हमेशा बाबा सोमान देता है। पर कल की जो मुरली थी उसमें, कल की बंधु की संतोष में कल की एक मुरली थी थर्ड सेकंड पेज पे, जिसमें एक पूरा पैराग्राफ था जिसमें बाबा ने ऐसा बोल दिया कि जिसमें सोमान नहीं है पर सत्य बोला, वो बोला कौन सा बोलो, तुम्हारा योग नहीं है, तुम में ताकत नहीं है, तुम होशियार नहीं हो, तुम छोटे बच्चे जैसे अभी भी रोते रहते हो, तुम आत्माभिमानी नहीं बनते, तुम में देहाभिमान बहुत है, तुम में विदेही नहीं बनते। पूरा पैराग्राफ भरा था कि ऐसा था। याद है थोड़ा करते हैं एक पैराग्राफ,
योग की ताकत नहीं है,
तुम में योग की ताकत नहीं है, तुम इतने होशियार नहीं हो दूसरों को समझा सके, तुम्हारा योग तुम माया के सामने ढेरते नहीं, तुम छोटे बच्चे अभी भी रोते रहते हो, देहाभिमान बहुत है, आत्माभिमानी नहीं हो, विजयी नहीं हो। फिर बोला याद करते रहोगे तो खुशी का पारा चलेगा, उसी पैराग्राफ में
पहले उतार के फिर चढ़ा दिए।
ऐसा बहुत कम बोलते हो, ऐसा बहुत अव्यक्त वाणी में तो ऐसा कभी नहीं बोलते, ये साकार वाणी में एक पैराग्राफ आ गया, अव्यक्त में तो ऐसा कुछ कभी नहीं बोलेंगे।
सरकार ने तो और बड़े कड़े कड़े हैं,
कड़े कड़े बोल में छाट के सामने रखे,
ताकत नहीं
और बोलो। बालाजी भाई और क्या बोला बाबा? हाँ संग दोष, दस साल वाले भी पलायन कर जाते हैं संग दोष।
क्या कह रहे थे बाला भाई?
बालाजी भाई एक हफ्ते का मुरली पता नहीं, ब्राह्मण बोले मुझे मुरली पता नहीं तो कैसा लगेगा
वो बता सकते हैं।
एक सप्ताह के अंदर बहुत सारे
साधन और साधना,
साधना साधनों के आधार पर,
साधना के आधार साधनों आधार पर साधना ना हो, साधनों के साथ साथ साधना चले बाबा ने बोला तो खुश उमंग रहेगा। अगर साधना के आधार पर अगर साधना है तो उमंग उत्साह नहीं होगा, बाप बीच में से निकल जाएगा। वरदान था ये यज्ञ कब तक चलेगा? स्वाहा, क्योंकि बाबा ने बोला कि कोई भी यज्ञ होता है ना उसका जब अंत होता है तो सब कुछ स्वाहा कर दे, आहुति डाली जाती है। ये यज्ञ है ना, इसमें सारी दुनिया की आहुति डालेंगे तब ये यज्ञ समाप्त होगा। हाँ और फिर थोड़ा पावरफुल बताओ, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र, आत्मा समझ बाप को याद करके, बाप समान बनना, ये पॉइंट छोड़ के दूसरी लक्ष्मी नारायण बनना है, ये पॉइंट छोड़ के बताओ अच्छा स्लोगन विकालदर्शी होने का इसेंस और रूहान इसका सेंस है तो सर्विसेबल है। प्रधान एकता और एकाग्रता है तो सफलता है, जहाँ एकता है एकाग्रता है वहाँ ही सफलता है, ये दूसरा स्लोगन था। फिर आगे ये लास्ट हफ्ते की मूर्ति है, हफ्ते का नहीं आगे बोलो। अंत में ग्रहचारी बैठना बंद हो जाए और आगे वो तीन धर्म, एक एक टांग टूटी हुई और झाड़ सड़ गया है बनी एंट्री, उसका देवी देवता का धर्म वो है, वो मतलब ये सब कुछ मतलब। फिर और आगे भक्ति बनी कितने इसमें आ गए और कितने उड़ गए, ऐसे ही ना भट्टी बनी कितने आ गए और कितने उड़ गए। फुर्सत
वो भी इसी सप्ताह में था, हाँ मना वो था,
हाँ साहूकार और गरीब, साहूकार और गरीब
निर्माण।
ये आज सुबह की है हमारी संडे की, वो मतलब ऑब्जेक्टिव वाली, वो है निश्चय बुद्धि, जो निश्चय बुद्धि होंगे वो निमित्त भाव, निमित्त बुद्धि होगी तो निर्माण बनेगी, वो दूसरा। और थोड़ा हाँ उधर फूलों का बगीचा जब बनेगा तब ये फूलों के जंगल को, काटों के जंगल को आग लगेगी। और हाँ ये विकल्प तो था, और नहीं अच्छा कहाँ देखो इधर इधर स्कैन करो, इधर कंप्यूटर में स्कैन करो कौन सा रहेगा फोल्डर,
ये परीक्षा साल है
परीक्षा में ये नहीं बनाया। हाँ बाप साथी भी है खिवैया, अभी एक मुरली तुम भी खिवैया हो, सर्व संबंध बाप से मेरा काका मामा इनसे योग नहीं हो, गुरु गोसाई एक बाप से योग हो, काका मामा गुरु गोसाई
संपूर्ण नष्ट मुहा बने तो तुम्हारे बंधन कटेंगे।
पापा को याद करने से सदा
हेल्दी वेल्दी, सद बाप से एवर हेल्दी, एवर हेल्दी एवर एवर हेल्दी पने का वर्षा मिलता है। अगर हेल्थ है वेल्थ नहीं तो मजा नहीं, वेल्थ है हेल्थ है तो भी मजा नहीं, दोनों चाहिए।
आत्मा समझ कर बाबा को याद करोगे तो 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी, और सदर्शन चक्र को घुमाओगे
तो वेल्दी
21 जन्मों के लिए एवर वेल्दी,
और वो वही पे है कि हेल्थ है वेल्थ नहीं तो मजा नहीं, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं।
अब घर जाना है, ये अब नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना और आप घर जाना, यही मन मना रहो मध्या जी को घर जाना,
चलते फिरते समझ के हर कर्म करो,
कल
हर समय अपने आप को और हर एक का पार्ट साक्षी होकर देखो। हमारा लंगर उठ चुका है, हम चल पड़े लंगर उठ चुका है। एक मुरली में था, हमारा लंगर उठ चला हम चल पड़े, पुरानी दुनिया पीछे रह गई, हमें बेहद की विराज में तो कुछ। और बराबर अगर कोई कहे हमको शांति में बिठाओ, अरे अरे क्या तुम आत्मा शांत स्वरूप नहीं हो जो पूछते हो कि मुझे शांति में बिठाओ, अरे तुम स्वयं आत्मा ही शांत, तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है, तो क्यों बोलते हो कि मुझे शांति में बिठाओ,
क्यों बोलते हो?
सदा दुर्भाग्यशाली कलयुग में, और सतयुग में सदा सौभाग्यशाली, सदा दुर्भाग्यशाली। यहाँ पे जितने हैं ना सारे बड़े बड़े लोग, हमको लगता है कितना इनका नाम हो रहा है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या अमिताभ बच्चन हो, ये सब सदा या भी सफर तो सदा दुर्भाग्यशाली और सतयुग में सदा सौभाग्यशाली। और फॉलो करना
है
अभी परसों, कल कहीं
कल
कहीं कल कहीं और शैलेंद्र भाई एक हफ्ते वाला
और सुनाओ बाकी
जो आपने दिव्य दृष्टि से देखा है ना, इन आंखों से
वो सब देखोगे,
इन आंखों से
देखोगे, इन आंखों से
जो साक्षात्कार तुमको हुआ है वो अभी देखोगे। और उसमें एक दूसरा था जिनको दूसरा एक पॉइंट है वहाँ जो चलो और एक हफ्ते भर में सारे वरदान हो गए, ब्रह्मचारी का वरदान हो गया एक, दूसरा वरदान हो गया साधना के, दो वरदान साधना और साधन के आधार वाले दो वरदान थे पहले, पावर अपनी सारी शक्तियों का विन कर दो दूसरों को, उसके लिए स्वयं में सारी पावर चाहिए तो सेवा में सफलता हो, तो अपनी सारी पावर दूसरों को विन कर दो।
माता
मैं
आज
पे आ जाएंगे, आज अभी आएगा, अभी आज में अभी आपको। और करम करावन हर का हो गया, कंबाइंड स्वरूप का हो गया, ब्रह्मचारी का हो गया, साधन
कोई बड़े आदमी थोड़ा अच्छा काम कर लिया है,
कितना
सम्मान
कल क्या
अच्छा आदमी कोई बड़ा काम कर रहे तो कितना सम्मान मिलता है? नहीं आज नहीं था उसमें।
अच्छा वो एक गरीब का था ना, गरीब है कोई, गवर्नमेंट के पास जाते हैं, हम भारत की सच्ची सेवा करते हैं, मुझे हैशलम वो भी था और पढ़ाई वाला था, ये कल था, मुझे हैशलम
तो गवर्नमेंट को लिखना चाहिए कि हम भारत की सच्ची सेवा करते हैं,
मुझे हैशलम दो, काम महाशत्रु है वही था,
काम महाशत्रु है
बोलो। हाँ बाबा ने बोला था घर में रहने वालों को बोलो हमको सपना आया है युक्ति से कुछ बोला युक्ति से मुक्ति मिली
साक्षात्कार हुआ है
सबसे तोड़
निभाना है, उनसे नफरत नहीं करनी माखन
बाबा का जो भी लेना है
दुनिया उनको अपने धर्म का इतना नशा है कि वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, बाबा ने कहा
नहीं बोला अपने हाथ
नहीं, नहीं लेंगे तुम्हारा
लिटरेचर, लेकिन देना है
बोला अपने हाथ में करके बैठे,
उनको अपने धर्म का नशा है
आदम आदम
बीबी
ऐसे लिटरेचर दो तीन रखे। लेकिन वो दूसरे का
लेकर बताया ना जो अपने ऊपर अपने कल्याण करने के लिए अपने साथ अपने बातें करने से
अपने आप से बातें करो अपने आप से बातें
करो
कौन सा संगदोष के कारण और
समर्थ बात उसका हाथ नहीं
सारे श्लोकों याद करो
बड़ों को बुला के सेवा करना चाहिए
भारत
नहीं मेरा
ये आ गया तो मेरा कम स्लोगन सारे करावन हार पे एक स्लोगन था कोई पाप करावन हार है ये स्मृति रहे अगर मगर वाला हो गया उसके बाद में ये एकता और एकाग्रता पर हो गया सफलता मिलेगी फिर क्वेश्चन मार्क वाला हो गया मैं अरे कल वाला स्लोगन बोलो ना अर्जी डालने की बजाय
मर्जी
राजी रहने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है ज्ञानी तो आत्मा वो है वो अर्जी नहीं डालते राजी करते हैं याद अर्थात फरियाद नहीं साधना करनी आराधना नहीं उस स्लोगन में था ना सक याद अर्थात शक्तिशाली साधना अर्थात शक्तिशाली याद वरदान आराधना नहीं फरियाद नहीं और कल बोला था अर्जी नहीं डालो राजी रहने वाले वो है ज्ञानी तो आत्मा कल का और
निर्बंधन का भी हो गया
और
बाबा ने कहा था घड़ी घड़ी याद करो तुम आत्मा हो ये हमारा शरीर है मैं आत्मा शरीर में हूँ और
आत्मा देखती हूँ मैं आत्मा
नहीं और गंज मिले हैं आत्मा हाँ। ये थे और उसमें था कि अभी हमको वापस जाना है
जैसे नाटक पूरा होता है तो एक्टर नाटक के उपराम हो जाते हैं जैसे नाटक पूरा होता है तो एक्टर नाटक के उपराम हो जाते हैं तो इसे अभी हमको जाना है तो उस तरह तुमको भी इससे उपराम हो जाए
बाबा बोला जैसे अचानक कोई शरीर छोड़ देता है तो सारे बंधन उसके टूट जाते हैं
हाँ जीते जी मर जाता है कोई जैसे उधर मर जाता है सारे बंधन टूट जाता है वैसे तुमको यहाँ जीते जी मर
जाता
है बड़ा घड़ी हो गया रेडियम हो गया कलर हो गया आर्टिस्ट का बहुत मान होता है वो हो गया अच्छा इनके साथ नहीं सेवा और आर्टिस्ट को याद किया और किसको याद किया अब बाबा से पूछो कि बाबा हम ये कर्म करते हैं तो इसमें अगर कोई कर्म में पूछते हैं तो बाबा को पूछो कि ये कर्म में क्या करना चाहिए ऐसा एक प्रश्न था बाबा से पूछो और प्रीतम प्रीतम था दिलरुबा और दिलवाड़ा मंदिर को भी याद किया था बीच में और वो वाम मार्ग में चले गए आर्य और अनार्य उसको भी परसों याद किया था आर्य अनार्य तो आर्य किसी ने बोल दिया तब फिर चल पड़ा कृष्ण भगवान हुआ तो किसी ने बोल दिया तब फिर चल पड़ा हाँ और फिर वो कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेदों से फायदा क्या वेद शास्त्रों से फायदा क्या फिर मिलता कुछ नहीं फिर बोलते अभी अगले साल वापस अभी अगले साल ये कॉन्फ्रेंस वापस करेंगे हाँ गीता का खंडन होने से बाकी जितने बाल बच्चे हैं वेद शास्त्र सबका खंडन हो गया
कैसे
अभी वो बताओ
हाँ।
तो मुझे भी समझ में नहीं आया क्योंकि वेद चार है उपनिषद 108 है 18 पुराण है 6 षडशास्त्र है भारत में सांख्य वेदांत मीमांसा पूर्व मीमांसा और एक गीता है तो गीता का खंडन होना से इन सबका खंडन कैसे हो गया अभी इस पर चिंतन करके नेक्स्ट टाइम बताना फाउंडेशन गीता है बट फिर भी सोचने वाली बात है ये जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद
नहीं नहीं ये जो यजुर्वेद सामवेद ये सब जो वेद है उपनिषद है ये हिंदू के लिए है ओनली फॉर हिंदू इसको नहीं मानते पर ये जो गीता है गीता
ये मिलता है गीता अभी 100 साल में ही विदेश मतलब इतना बाहर गई है
नहीं 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 गीता कभी भी बाहर गया हो लेकिन गीता और बाइबल को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जितना गीता में स्पष्ट बताया उतना बाइबल नहीं बता सका है
वो तो है
आप कुरान को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जितना गीता क्लियर करके बता उतना कुरान नहीं बता पा रहा है ऐसे और भी जो धर्म शास्त्र धर्म के ऐसे ऐसे शास्त्र वो सारा रिलेटेड है गीता से माना गीता में जो चीज बताना कहा है या बताया है उसी को उन्होंने मॉडिफाई करके बताया है लेकिन इसलिए क्लियर गीता में है और गीता में लिखी है कि भगवान कृष्ण है इसलिए लोग मूर्ख गए हैं अगर गीता में शिव बाबा का वो जो ज्योतिष स्वरूप का वर्णन बताए तो बाइबल भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा और कुरान भी एक्सेप्ट कर लेगा और सभी धर्म मान लेंगे तो सभी धर्म का जो फाउंडेशन गड़बड़ हुआ वो गीता से गड़बड़
वो तो एक बात है पर फिर भी कई लोग जितने पुराण है ना अगर एक पुराण ले लो कोई शिव पुराण उसमें शिव शंकर को भगवान माना है दूसरा एक पुराण ले लो तो उसको भगवान माना है एक तीसरा पुराण ले लो तो वो सब कुछ वही है उस पुराण में जितने पुराण है और एक एक पुराण का एक एक भगवान है और उसको ही सब कुछ माना है जैसे देवी पुराण पढ़ो देवी भागवत पढ़ो तो देवी भागवत में ऐसा लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश की भी प्राप्ति उत्पत्ति देवी से हुई है शिव विष्णु पुराण पढ़ो तो ये सब की उत्पत्ति विष्णु से हुई है मतलब एक एक पुराण में जो जो उसका अधिपति व्यक्ति है वही सब कुछ है जैसे वो कृष्ण के भक्त बोलते हैं कृष्ण के भक्तों के और देवी के भक्तों में हमेशा झगड़ा होता है कृष्ण के भक्त बोलते हैं कि कृष्ण जो है ना सबकी नैया कृष्ण पार करेगा तो देवी के भक्त बोलते हैं हमारी देवी थोड़ी ना नाव चलाएगी उसने तो कृष्ण को रख दिया है तो वो थोड़ी ना पार कराएगी सबको नाव में बहुत सागर के ये सब तो चलो ये एक बात थी और गीता के खंडन पे एक मुरली थी पूरी
गीता के ऊपर
पूरा एक मुरली गीता के ऊपर ही थी कि गीता का खंडन हो गया है और
सागर कहते हैं तो मदर तो चाहिए
रचता के लिए
मंगेश भाई ये बताया इतना दिन हम लोगों ने सुना फादर ये कभी सच नहीं हुआ कि भाई मदर कौन है
बेसमझ अनाड़ी
ये मान बेसमझ
है बेसमझ वही भाई मुझे
नालायक देखता निकम्मा है निकम्मा
नहीं अनाड़ी
अनाड़ी अनाड़ी
चलो अभी ये मुरली यहाँ खत्म करके आज की मुरली पे आ जाओ शुरुआत आज की मुरली
तो आज शुरू कर दो आज की
तो आज भाग्य विधाता बाप तो भाग्य विधाता बाप अपने सदा भाग्य विधाता बाप क्या पूछते हैं कि सदा अपने भाग्य का सुमिरन करते हुए हर्षित रहते हो क्या ये शुरुआत है मुरली की कि सदा अपने भाग्य का सुमिरन करते हुए हर्षित रहते ये पूछा बाप जिस नजर से भाग्य जैसा हमको देखते वैसे खुद तुम अपने आप को देखते हो क्योंकि ये जो भाग्य है भविष्य में भी नहीं मिलेगा ये
सारे कल्प में
अभी ये भाग्य मिलेगा और एक चीज है जो अभी मिलेगी इसी मुरली में वो कौन सी है बताओ इसी मुरली में अतीन्द्रिय सुख और कभी नहीं मिलेगा ब्राह्मणों की विशेषता है वरदान है इस युग का अतीन्द्रिय सुख ब्राह्मणों की विशेषता है अतीन्द्रिय सुख अगर ये अभी नहीं पाया तो कब पाया अभी अनुभव नहीं है किया तो कब किया नहीं किया तो क्या किया कुछ नहीं किया अभी नहीं किया तो कुछ नहीं किया ये सौदा अभी करो अभी नहीं किया तो कुछ नहीं किया तो भाग्य जो है ये अभी है केवल
अतीन्द्रिय सुख क्यों नहीं होता
इंद्रियों का आकर्षण नहीं
वो आएंगे तो सबसे पहले बाबा ने पूछा कि भाग्य विधाता बाप अपने भाग्य सदा भाग्य की सुमिरन में रहते हर्षित रहते हो क्या ये पूछा भाग्य का सुमिरन रहा तो हर्षित रहेंगे नहीं तो नहीं रहेंगे ये समझ लो और वो जो भाग्य है वो भविष्य में नहीं मिलेगा अभी का ये भाग्य तो ऐसी श्रेष्ठ भाग्यशाली स्थिति का अनुभव अभी होता है बाबा पूछ रहे हैं मनसा वाचा कर्मना फिर तीन बातों के ऊपर ध्यान देने के बोला पहली बात कौन सी स्वमान दूसरी बात फरमान और तीसरी बात सम्मान तो स्वमान फरमान
सन्मान। तो मुरली है सोमान के ऊपर, तो बाबा ने वहाँ पे सोमान के 3 फायदे गुनाए, हम 10-12 ऐड करेंगे बाद में। तो वो बाबा ने जो गिना है वो बताओ अभी। सम्मान से, सोमान से क्या क्या होता है, सोमान में स्थित रहने से क्या होता है? सबसे पहला विघ्न विनाशक होंगे। कैसे?
उसके लिए 3 बातें बताए।
हाँ वो कैसे?
एक तो देवान,
मतलब उसका मीनिंग बताया बाबा ने कि अभिमान से मुक्त रहेंगे। फिर अभिमान 5 बताए, कौन से अभिमान होते हैं? देह का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सेवा का अभिमान, गुणों का अभिमान, विशेषताओं का अभिमान,
सेवा सेवा का,
गुणों का, विशेषताओं का, सेवा का, देह का, बुद्धि,
ये
अभिमान है। ये बाबा ने गिना, अभी हम दूसरे गिनेंगे। कौन कौन से अभिमान है माता जी बोलो? रूप का अभिमान में सुंदर, वो देह में आ गया।
बुद्धि का,
मेरा चिंतन बहुत अच्छा है।
प्रोफेशन का,
धन का अभिमान, मैं बहुत धनवान हूँ। मान, मेरा बहुत महान है, ये अभिमान है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ,
मैं बहुत जानकार,
मैं बहुत अच्छा भाषण करता हूँ, मैं पोजीशन वाला हूँ, और मेरी बहुत जान पहचान। अरे यज्ञ में तो मुझे सब सेंटर वाले मुझे जानते, कहीं पे भी चले जाओ मेरा नाम ले लेना, काम हो जाएगा।
मेरा नाम ले लेना।
और अभिमान कौन कौन सा आता है? मैं नहीं हूँ, करना है तो कर लो, मैं तो जा रहा हूँ। ये भी अभिमान है एक प्रकार का। मैं हूँ तो सेवा है, मैं नहीं हूँ तो देखो, देखता हूँ कैसे करते हैं, देख लो तुम। मैं तो चला। और अभिमान कौन सा है? हाँ, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मेरा भाषण बहुत अच्छा है, मैं बोलता अच्छा हूँ, मेरा चिंतन बहुत अच्छा है, मेरा
मनन,
मेरा मनन बहुत अच्छा है,
मेरा योग बहुत अच्छा है,
मेरा योग बहुत अच्छा है, और
ज्ञान अक्सर सुनाता हूँ।
हाँ, मेरा चार्ट बहुत अच्छा है, और मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, और
मेरा
नाम भी बहुत अच्छा है। मैं भोजन टेस्टी बनाता हूँ, मेरे जैसा भोजन तो कोई बना ही नहीं सकता, ये भी अभिमान है। मैं ऑलराउंडर हूँ। तो बुद्धि का अभिमान, सेवा का अभिमान, विशेषताओं का अभिमान, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, सुंदरता का अभिमान, और भी किसी भी बात में अभिमान आ सकता है। मैंने विकारों को जीत लिया है।
पंक्चुअल होना अभिमान नहीं है, लेकिन दूसरों का कंपेयर करके हम बोलते हैं तो अभिमान,
तो अभिमान।
दूसरे ये सर्टिफिकेट है ना, हम क्यों बोल रहे हैं अपने?
हमको बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमारे अंदर कुछ है तो वो हमको बोलने की जरूरत नहीं है, हमको बोलना पड़ रहा है, मतलब वो नहीं है,
कुछ है।
जो मतलब ये ऐसा है ना, जिसमें जो नहीं होता है ना वो बहुत जोर जोर से बोलता है, ये सबने करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, उसमें जो नहीं होता है ना वही बहुत ज्यादा बोलते। हाँ, कोई हमारी तारीफ करे और हमने अंदर ही अंदर खुशी, अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, बड़ी खुशी। मान अपमान में समान, वो दूसरा। अभी हम अभिमान की लिस्ट निकाल रहे हैं कि किस भी बात से अभिमान आ सकता है। ज्ञान में मैं बहुत पुराना हूँ, बहुत पुराना हूँ, तुम तो अभी अभी आए, तुमको क्या पता? मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुना सकता हूँ तुमको, मैं मुरली बहुत अच्छा सुनाता हूँ। मैं अमृत वेला बहुत अच्छा योग करता हूँ,
हैंडलिंग पावर अच्छी है।
हाँ, मैं अच्छा मैनेज करता हूँ, मुझे बाबा से बहुत अच्छी टचिंग होती है। और
बाबा मार के छोड़े हमको।
वो बताते हैं ना, एक बहन, काल्पनिक उदाहरण, एक बहन जिसने बहुत सेवा की, सारी उम्र सेवा में दे दी, हजारों सेंटर खोले, हजारों लोगों का कोर्स, लाखों का कोर्स कराया, हजारों सेंटर खोले, विदेश देश विदेश में सेवा की, बाबा के पास पहुंची, बाबा ने बोला बच्चे क्या किया तुमने? तो वो चालू होगी, बाबा मैंने ये किया, बाबा मैंने ऐसा किया, बाबा मैंने आपकी ऐसी सेवा की, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, पूरा हुआ। फिर बाबा ने छोटे से शब्द में बोल दिया, बच्ची ये सब मैं कर रहा था, तुमने क्या किया? संगम युग पर हम जो कुछ कर रहे हैं वो परमात्मा शक्तियों के द्वारा कर रहे हैं। अगर परमात्मा शक्तियों को हटा दिया जाए तो हम कुछ भी नहीं। हम जो पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ के ज्ञान चिंतन भी कर रहे हैं, वो भी परमात्मा कृपा है,
की कृपा है।
अगर इस कृपा को हटा दिया जाए तो हम ना पुरुषार्थ कर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे, ये सुख उसकी कृपा है। ये बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान भगवत भक्ति में भी कहते हैं कि बार बार अच्छे अच्छे लोगों का अगर संग मिलने लगा ना तो समझ लेना भगवान की कृपा हो गई। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, तो ये परमात्मा कृपा है तो हम कुछ कर रहे हैं। और युधिष्ठिर अपने इधर राजमहल में चल रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, लोग घरों घरों में ताला लग रहा है, उसको लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, लोग वहाँ चोरियां हो रही है, वो उसको पता चला जाओ कृष्ण को बुलाओ, क्यों ऐसा हो रहा है। उधर से संदेश आता है कृष्ण तो गया, अर्जुन इतना धनुर्धर उधर से आ रहा था, भीलों ने लूट लिया, बाद में पता चला आबू के पास, फिर पता चला अरे उसको लगा ये तो युद्ध मैं ही कर रहा था, अरे कृष्ण था वहां पे, उसकी शक्तियां काम कर रही थी, वो हटा और ये गिर गया नीचे। हम में जो हमारा जो चिंतन है, हमारा जो योग है, हमारा जो अमृत वेला है, हम जहाँ रह रहे हैं
उसकी कृपा है,
ये कृपा है। इस कृपा पुरुषार्थ का अपना स्थान है कि हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें, पर उसकी कृपा हम पर है इसके लिए ये सब हो रहा है, इसको भूलना नहीं है।
जैसे माना कहते भगवान की आज्ञा के उन्हें पता नहीं चलता था, वो इस तरीके से
वो ये बहुत सूक्ष्म राज है इसमें अभी, मतलब ये भक्ति का पॉइंट है पर इधर भी उतना ही फिट होता है,
लागू होता है
उसकी कृपा है करके ये सब हो रहा है।
पढ़ाई ही कृपा है,
सब कुछ कृपा है अगर देखा
जाए। नहीं ये तो बाबा मुरली में भी कह रहा है, मैं तुमको पढ़ाता हूँ यही तुम्हारी
कृपा है,
कृपा करता हूँ मैं तुमको,
कृपा के लिए।
तो ये है अभिमान है। तो सबसे पहला फायदा है अभी स्वमान में स्थित रहने का, विघ्न विनाशक बनते हैं, उसी का दूसरा पॉइंट है क्योंकि ये सारे अभिमान से समाप्त होते हैं, इसके लिए विघ्न विनाशक बनते हैं, ये स्वमान से पहला फायदा। दूसरा आज की मुर्गी का बताना, स्वमान से निर्माण बनते हैं। दूसरा तीसरा मान, मांगना नहीं होता है, मान स्वतः ही तुमको मिल जाता है। स्वतः मिलता है वहाँ पे, बाबा ने अनादि नियम बताया है कौन सा नियम है वो, अगर तुम स्वमान अगर मांगने की इच्छा का त्याग करने से सर्व का श्रेष्ठ मान स्वतः ही मिलता है, ये अनादि नियम बना हुआ है। एक दूसरा नियम बनाया यज्ञ में, वो कौन सा, नहीं दूसरा और एक नियम यहाँ पर बना हुआ है, कर्मों की गुह्य गति, कर्मों की गुह्य गति, लास्ट संडे के लास्ट संडे की मुरली में एक का सौ गुना प्राप्ति अथवा भोगना या पश्चाताप, ये ऑटोमेटिक मशीनरी है, वो एक नियम बनाया है, ये दूसरा नियम बनाया है। अगर मान मांगोगे तो मान मिलेगा नहीं, अगर पहले मैं करोगे तो वो पहले मैं नहीं होगा, पहले आप करोगे तो स्वतः ही सर्व की तरफ से पहले मैं हो जाएगा आज सुबह। तो मान की प्राप्ति, मान अगर मांगोगे तो नहीं मिलेगा। फिर वहीं पे बाबा ने बोला
और मान देने से सारे कल्प में मान मिलेगा।
किस किस से मान मिलेगा अभी वो बताओ। एक तो तीन बाबा ने बताए, दो हम बताएंगे आगे, टोटल पांच। किस कौन कौन मान लेगा, अगर हम दूसरों को मान सम्मान में रहेंगे तो हमको मान मिलेगा, किस किस से?
एक तो रॉयल परिवार,
रॉयल फैमिली से मान मिलेगा,
प्रजा परिवार,
प्रजा से मान मिलेगा, तो सतयुग त्रेता में दो से मान मिलेगा, द्वापर में दो से मान मिलेगा, और संगम युग में
प्रकृति
मान देगी, और कौन मान देगा संगम युग में,
सब ब्राह्मण,
जो आत्मा स्वमान में स्थित है स्वयं भगवान उनको मान देता है। तो संगम युग पर स्वयं भगवान तुमको मान देगा, स्वयं प्रकृति तुमको मान देगी, चाहो ना चाहो, कहो ना कहो,
उस
दिन का चाहो ना चाहो, कहो ना कहो, जो व्यक्ति स्वमान में स्थित है माँ प्रकृति उसको मान देगी, और जो स्वमान की संकल्प मात्र की इच्छा करता है मान की उसको नहीं मिलेगा।
ये दूसरी मुर्गी का पॉइंट है,
ये 87
की मुर्गी है,
18 दिसंबर
1987
की मुर्गी है ये दिसंबर। तो भगवान स्वयं तुमको मान देगा अगर तुम स्वमान में रहोगे तो। तो बाप स्वमान क्या है, स्वमान में रहना अर्थात जो बाप की महिमा है वही
स्वमान,
तुम्हारे स्वमान है। एक मुरली में बोला था बाप के टाइटल तुम्हारे स्वमान, आज बोला बाप की महिमा तुम्हारे स्वमान, अगर एक भी महिमा में स्थित हो गए तो तुम स्वमान की स्थिति में स्थित हो। तो ये स्वमान तुम एक कल्प, सारे कल्प का भाग्य यहाँ तुम बनाते हो, सारे कल्प तुमको मान मिलता है अगर तुम अभी स्वमान में स्थित रहते हो। तो ये तीन फायदे बाबा ने बताए आज की मुरली में, सोमान की, अभी ये छोड़ो, अभी दूसरे फायदे बताओ 10-12 सोमान के। सोमान में स्थित रहने से क्या क्या हो सकता है? सोमान में स्थित रहने से व्यर्थ संकल्प नहीं करेंगे, एकाग्रता, बुद्धि एकाग्र बढ़ जाएगी, इसके लिए योग सहज हो जाएगा। क्योंकि सोमान में रहने से अशरीरी बन जाएंगे, सोमान में रहने से सोमान में, जब तुम सोमान में स्थित रहते हो तब संपूर्ण स्थित हो जाओगे, तब संपूर्ण बन जाओगे ईश्वरी महावाक्य। जब तुम सोमान में संपूर्ण रूप से स्थित हो जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे। सोमान और सोमान से क्या क्या होगा?
शांत रहेंगे,
शांत स्थित रहेंगे। अच्छा, और अपमान
फीलिंग नहीं आएगा,
अपमान की फीलिंग नहीं आएगा। दूसरा, जैसे आज बाबा ने बोला, सोमान में जब रहेंगे तो अभिमान नष्ट होगा, सोमान में हम रहेंगे तो दूसरों का भी अभिमान नष्ट होगा। ये दूसरा पॉइंट है,
दूसरों का भी मान नष्ट हो जाएगा।
हम सोमान में रहेंगे तो हमको देखकर दूसरों भी सोमान में स्थित हो जाएंगे, ये दूसरा पॉइंट। हम सोमान में रहेंगे तो हमारा सोमान दूसरों के लिए भी छत्र छाया का काम करेगा, ये एक तीसरा और एक दूसरा पॉइंट। अभी पर्टिकुलर सोमान के पर्टिकुलर, अगर मैं इस सोमान में रहता हूँ कि मैं ज्ञान मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो आजू बाजू के वायुमंडल को तुम परिवर्तन कर सकते हो, ये बाबा का एक महावाक्य है अव्यक्तवाणी में। अगर तुम मास्टर सर्वशक्तिवान के सोमान में रहते हो तो सर्व आत्माओं को शक्तियां प्रदान कर सकते हो। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस सोमान में रहते हो तो आत्माओं को पवित्रता की किरणें,
सुख शांति की किरणें।
मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, इस सोमान में रहोगे तो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नफरत घृणा ये सब नहीं आ सकता। किससे घृणा करोगे, किससे नफरत करोगे, किसका अकल्याण करोगे? अरे हमको सारा को कल्याण करना है, अकल्याण करे किसका? किसका करे? अगर कर भी दिया तो उसका कल्याण वापस हमको ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम हैं विश्व कल्याणकारी,
जिम्मेवार है, भारी मामला है।
तुमने दुख दिया है तुम ही दूर करो, ये स्लोगन है। डॉक्टर के पास पेशेंट की बातें हैं, क्योंकि जन्म शायद उसने दुख दिया होगा, तो तुमने दिया था, अभी तुम ही ठीक करो।
इसलिए इतनी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है,
क्योंकि ज्यादा दुख दिया है लोगों को। ऐसा कोई बोलता है संसार में, लौकिक में कोई बोलता है। चलो, और सोमान से क्या होगा? सोमान में स्थित रहेंगे तो हमारे विचार महान हो जाएंगे। सोमान में स्थित रहेंगे तो देहाभिमान, सोमान में स्थित रहेंगे तो वातावरण शक्तिशाली होगा, सोमान में स्थित रहेंगे तो ये आत्माभिमानी स्थिति है ना, सोमान सोमान व्यर्थ से बचेंगे, समर्थ समर्थ आत्मा बन जाएंगे, एकाग्रता बढ़ेगी, सफलता मिलेगी, माया जीत बनेंगे, सारा पूरा ज्ञान डाल दो उसमें। पर चिंतन पर दर्शन पर सबसे मुक्त रहेंगे, सारे पर से मुक्त रहेंगे, समान बनेंगे बाप, माननीय पूजनीय। आज बाबा ने बोला आगे कि माननीय भी बनेंगे पूजनीय भी बनेंगे। वो लोग अल्पकाल का, अल्पकाल का कोई मान देते हैं तो अल्पकाल की किसी को कोई वस्तु देते हैं, अल्पकाल का सहयोग देते हैं, तो वो अल्पकाल के लिए खाली माननीय बनेंगे, पर तुम माननीय नहीं, तुम माननीय बनेंगे पूजनीय बनेंगे। वर्णन करने वाले केवल वो गायन योग्य बनेंगे, पर जो मनन करेंगे, जो मगन रहेंगे, वो पूजनीय भी बनेंगे, गायन योग्य भी बनेंगे। ये 87 की मूवी है। आगे आगे फिर सम्मान की बात बोली बाबा ने, सम्मान दो, किसी को उमंग उत्साह देकर आगे बढ़ना,
ये बहुत बड़ा पुण्य है,
ये बहुत बड़ा पुण्य है, बड़े से बड़ा पुण्य है, है। और ऐसे तुम सबसे बड़ी नंबर वन पुण्यात्मा तुम, उनका है अल्पकाल का, ये है सदाकाल का पुण्य, सदाकाल का पुण्य और बड़े से बड़ा पुण्य है ये, सारे कलप चलता है। तो सम्मान दो, सम्मान चाहिए, मुझे सम्मान नहीं दिया, इसको सम्मान दिया, ये है लेने की भावना है भिखारीपन, बेगरपन, रॉयल बेगरपन। तुमको देना है, दाता के बच्चे हैं तो देना है, वो जब निर्णायक युद्ध होता है कर्ण का, होने वाला होता है अर्जुन के साथ, तो उसका गुरु उसके पास आता है परशुराम, और उसको बोलता है कि कल की जो युद्ध है उसमें तुम विजय अर्जुन को दे देना। तो बोलते फिर भी वो बोलता है क्यों? तो बोलता है कर्ण तुम्हारा जन्म ही देने के लिए देने के लिए हुआ है, तुम प्रसिद्ध ही हो देने के लिए, कर्ण
दान भी
ले कैसे सकते हो? परशुराम कर्ण को बोलता है कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है तुम नहीं नहीं डायरेक्ट आता है, जिस दिन युद्ध होता है ना उस दिन आता है डायरेक्ट, वो स्वपन में तब बोलता है जब वो कवच लेने की बारी देने लेने वो होता है, वो मत देना, पर वो दे देता है। पर जब युद्ध होता है ना तब वो डायरेक्ट आता है, बोलता है कि तुम दे देना। तो वो पूछता है, तो वो बोलता है कि तुम्हारा तुम करण तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, लेने के लिए नहीं, इसके लिए दे देना विजय। तो दे देना दान में, दे देना विजय। तो बाबा ने बोला तुम भी दाता के बच्चे किस लिए प्रसिद्ध हो, देने के लिए, लेने के लिए नहीं। सम्मान दो, सम्मान चाहिए, देना ही लेना है। ये हो गई फर्स्ट मुरली। हाँ, और फिर आगे बाबा ने बोला फरमान, फरमान पे जो चलेंगे उनके लिए क्या बोला,
कुर्बान जाएगी माया,
माया कुर्बान जाएगी, विश्व कुर्बान जाएगा, पर पहले तुम बाप पर कुर्बान जाओ। तो माया तुम पर कुर्बान जाएगी, विश्व तुम पर कुर्बान जाएगा, पर अभी तुम फरमान पर नहीं चलते तो बार बार माया वार करेगी। और बार बार माया वार कब करेगी, इसी मुरली में दूसरा पॉइंट है कहीं तो भी, वो बताओ
बार बार माया
वार कब करेगी। जैसे यहाँ हाँ, जब त्रिकाल दर्शी स्थिति में स्थित नहीं होते तो माया वार बार बार करेगी, वो नीचे और ये ऊपर वापस बोला है, उसमें आएंगे। तो जो फरमान पर नहीं चलते, अगर माया बार बार वार कर रही है तो समझ लेना कोई ना कोई फरमान पर हम नहीं चल रहे। झटकू रूप में माया नहीं, झटकू रूप नहीं होता, इसके लिए माया और आप दोनों चिल्लाते रहते हो, माया भी चिल्लाती और तुम भी चिल्लाते हो।
बाबा नहीं चिल्लाता, चिल्लाता
है। बाबा चिल्लाता है। तो जब झटकू रूप नहीं होता है तो आप भी चिल्लाते हो और माया भी चिल्लाती है, दोनों चिल्लाते रहते हो। इसके लिए बाबा ने बोला समान और फरमान, अगर दोनों से रहो तो कल्प कल्प में मुश्किलों से छूट जाएंगे, हमेशा के लिए, सारे सदा के लिए मुश्किलों से छूट जाएंगे। तो ये हो गई मुरली वहाँ पे। फिर याद प्यार, और दूसरा है पांडवों से मुलाकात। तो पांडवों को बाबा बोल रहे महावीर माया जीत, तो परखने की शक्ति, जैसे तूफान का उदाहरण दिया, तूफान आने वाला हो। पहले क्या करते थे, 1999 का जब तूफान आया तो 10,000 लोग मरे, अभी ये सुपर साइक्लोन था उससे भी बड़ा, एक भी नहीं मरा, केवल 7-15 लोग जो मरे वो तूफान आने से पहले मर गए। तो बाबा ने बोला वो परखने की शक्ति, दुरान देशी बुद्धि होती है उनके पास, अभी पूरी तैयारी थी, 800 कैंप बना के रख दिए, एनडीआरएफ की पूरी इतनी बड़ी 3,000 की फौज रेडी थी, इसके लिए तूफान आया पर कुछ नहीं हुआ, ये सुपर साइक्लोन था। और जो 99 में हुआ उसमें 10,000 लोग मर गए थे। तो बाबा ने बोला तूफान जब आता था तो पहले क्या करते थे, पहले तूफान आया फिर बचाव करते थे, पर अभी पहले से ही भगा देते हैं। अभी इवैक्यूएशन कर दिया, 4.4 लाख लोग आंध्र ओडिशा के और 1 लाख एपी के, इवैक्यूएशन सबको स्थानांतरित, वहां से निकाल दिया। तो इवैक्यूएशन की बात मुरली में बाबा ने किया आज, कि अभी पहले ही भगा देते हैं। तो उनके पास परखने की शक्ति है। अरे साइंस की शक्ति इतनी आगे बढ़ रही है तो तुम्हारी साइलेंस की शक्ति कहाँ है? बाबा ने पूछा है वहीं पे, साइंस की शक्ति से इतना आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारी साइलेंस की पावर कहाँ है? हाँ, दुरानदेशी, त्रिकालदशी, फिर उसके बाद ही बोला माया बार बार नहीं वार करेगी जब त्रिकालदशी स्थिति में होंगे। क्या बात है, वर्तमान में क्या रूप है, पहले भी आई थी, इस बार आई तो इसको समाप्त तो कैसे करें? ये है त्रिकालदर्शी। कौन सी त्रिकालदर्शी स्थिति है, क्या बात है, वर्तमान स्वरूप क्या है, पहले भी आई थी, इस बार आई तो इसको समाप्त तो कैसे करें? ये है त्रिकालदर्शी स्थिति। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहोगे, वर्तमान को देखते हो ना, इसके लिए माया वार करते हो। त्रिकालदर्शी तीनों कालों को देखो तो माया वार नहीं करेगी। हाँ, आती है बैठ भी जाती है माया को, तुम चाय पानी भी पिलाते हो। एक मुझे मैं 95 में बाबा ने बोला था तुम ही तो चाय पानी पिलाओ, कि अगर तुम्हारे घर में कोई आया और उसको तुमको चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठेगा? तो बैठेगा ना, तो तुम भी तो माया को चाय पानी पिलाते हो तो वो जाएगी कैसे? खतरे करते हो ना तुम भी। फिर आगे
सुमान हो गया, परमान हो गया,
सुमान हो गया, परमान हो गया, पांडव हो गया।
माया का
कभी जीत कभी हार, फिर अभी यहाँ पर ही अतीन्द्रिय, अभी यहाँ तो हो गया, अभी आगे अतीन्द्रिय सुख। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तुमको नहीं होगा अगर ये ऐसा होते रहा, बार बार माया वार करती रहेगी ना। और अतीन्द्रिय सुख तुम कब करोगे, ये संगम युग तो समय है उसका, ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों की ये वरदान है संगम युग के लिए, और ब्राह्मणों का कर्तव्य ये विशेषता है अतीन्द्रिय सुख। अभी नहीं पाया तो कब पाओगे? अभी इसका अनुभव नहीं किया तो कब करोगे, क्या कब करोगे?
ने कहा था इंद्रियों का आकर्षण है
वो विष। अरे नहीं 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 अभी वो पार्टियों से मुलाकात, वो भी अतिंद्रिय सुख का ही है, पर ये दूसरा चालू है अभी, ये ऊपर है, ये उस पे आएंगे अभी हम धीरे धीरे 5 मिनट में। तो ये बाबा ने बोला था कि तो अतिंद्रिय सुख जो है वो अभी प्राप्त कर सकते हो सारे कल संगम युग में, और किसी युग में ये प्राप्त नहीं होगा, अभी प्राप्त हो सकता है अतिंद्रिय सुख। फिर है पार्टियों से मिलाता है, तो पहला पॉइंट है अतिंद्रिय सुख और इंद्रिय सुख। तो सदा अतिंद्रिय सुख में रहते हो, इंद्रिय सुख आकर्षित तो नहीं करता है? जैसे वो साहूकार राह चलते चलते अगर उसको कोई वस्तु मिल जाए परंतु वो उसको हाथ नहीं लगाता क्योंकि वो भरपूर है, संपन्न है, तो तुम भी चलते चलते अगर अतिंद्रिय सुख आ जाए तो उसको भी तुम क्या समझोगे? जहर समझोगे, तुच्छ समझोगे। तो जहर की तरफ कभी आकर्षित होते है क्या? भगवान ने पूछा जहर की तरफ कभी आकर्षित होते हो? तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन गए, मेहनत से छूट गए, तो इसको तुच्छ समझते हो तुम इंद्रिय सुखों को। तो एक तरफ है इंद्रिय सुख, एक है अतिंद्रिय सुख। अतिंद्रिय सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसकी मतलब कहीं ना कहीं इंद्रिय सुख की तरफ आकर्षण है, कहीं ना कहीं बुद्धि इसमें लगी हुई है, बुद्धि को कुछ ना कुछ खींच रहा है, इसके लिए एक रस नहीं आगे।
एक रस नहीं है तो भटकी रहती है,
कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खींच रहा है। तो अतिंद्रिय सुख का अनुभव कौन कर सकता है? जिसको इंद्रिय सुखों से मुक्त होना इतना आसान नहीं है, सारा संसार इंद्रिय सुखों में लिप्त है। आत्मा की मूल चाहना है सुख, जब उसको नहीं मिलेगा अतिंद्रिय सुख, वो इंद्रिय सुखों की तरफ जाएगा, चाहे वो 10 साल से ज्ञान में हो या 50 साल से ज्ञान में हो, चाहे वो 8 घंटा योग लगाए 4 घंटा योग लगाए, आत्मा को रोज सुख चाहिए। अगर उसको अमृत मिले अतिंद्रिय सुख नहीं मिला तो वो सारे दिन भर में किसी ना किसी से इंद्रिय सुख प्राप्त करने का, चाहे वो भोजन से या काम विकार से या और किसी से। संसार सारा काम विकार
जल रहा,
काम सुख में प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि इंद्रिय सुख में सर्वश्रेष्ठ सुख काम का है। क्यों? सबसे ज्यादा क्राइम जो होते हैं काम विकार से ही होते हैं, क्योंकि उसमें सुख है, पर वो इंद्रिय सुख है, आत्मा को सुख ही चाहिए, तो वो सबसे ज्यादा सुख उसी में है। खाने पीने का उसके सामने कुछ नहीं है, छोटा है बहुत। सबसे ज्यादा इंद्रिय सुख काम विकार का है, उसमें भी सुख है, ऐसे ही थोड़ी ना द्वापर युग से चला आ रहा है। क्यों पीछे भाग रहे? सारा संसार उसके पीछे भाग रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें सुख है, ऐसा डिनाई नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं है। पर हाँ, उसमें भी आश्चर्यपन है, उस सुख में भी है आश्चर्यपन। खाने पीने में आश्चर्यपन नहीं है, पर भोग में आश्चर्यपन है, इसके लिए सुख की अनुभूति है, पर कुछ सेकंड के लिए सुख है उसमें, शारीरिक शरीर का जो संबंध है उसमें, इसके लिए सारा संसार उसमें लिप्त है। पर ये इससे कौन मुक्त हो सकता है? जिनको अतिंद्रिय सुख मिल गया उनके लिए तो ये बिल्कुल तुच्छ है, जहर है। अरे सारे कल्प में तुमने यही तो किया, क्या क्या प्राप्ति की? ज्ञान से सोच सकते हो क्या कमाया और क्या गवाया? और तो गवाने वाले हो तो क्यों भागते हो उसके पीछे? आज बाबा ने पूछा, कमाया और गवाया, जब गवाना ही है तो क्यों भागते उसके पीछे? तो अतिंद्रिय सुख, आगे बाबा ने बोला तुम इच्छा रखने वाले नहीं हो, तो दो है, एक है जिज्ञासु, तुम बच्चे हो, जिज्ञासु बच्चे अर्थात प्राप्त, जिज्ञासु अर्थात प्राप्त हो, बच्चे अर्थात प्राप्त है, प्राप्त है इस अधिकारी अधिकार, इस अधिकार के नशे में रहेंगे वो, इस अधिकार में नशे में रहेंगे वो, इच्छा करने वाले हैं और इनको प्राप्त है, ये अधिकारी है, बच्चे अर्थात अधिकारी, जिज्ञासु अर्थात इच्छा रखने वाले, तो उनमें इच्छा है पर तुमको मिल चुका है, ये एक पॉइंट है। फिर आगे ढूंढना, बाबा छूटता नहीं, बाबा से कहते क्या करे, छूटता नहीं, अरे तुम खुद ही तो पकड़ के रखते हो तो छूटेगा कैसे? छोड़ो तो छूटे, बाप कहते हैं छोड़े तो छूटे। वो एक आदमी जाता है एक साधु के पास, बोलता है संसार में बहुत दुख है, मेरी पत्नी बच्चे सब दुख देते हैं, मुझे इस संसार के बंधन से छुड़ाओ कैसे भी करके। बोलते चलो छोड़ो, उससे वो साधु एक झाड़ को पकड़ लेता है वो गुरु, और जोर जोर से चलता है मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ उसके सामने। बोलते अरे गुरु जी आपने खुद ही तो पकड़ के रखा है, बोलते तुमने भी तो संसार को पकड़ के रखा है, और खुद चिल्लाते हो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बाबा ने आज बोला ना मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, बच्चे बोलते हमको छुड़ाओ, अरे छोड़ो तो छूटे, तुम छोड़ते ही नहीं हो, तुमने ही तो पकड़ के रखा है संसार को, इंद्रिय सुखों को तुमने पकड़ के रखा है, और फिर बोलते मुझे अतिंद्रिय सुख दो। वो पॉइंट वहां खत्म हुई। सेकंड पैराग्राफ है गुणग्राही। तो गुणग्राही अर्थात अवगुण में गुण देखने वाले,
कल्याण ढूंढ लेंगे अपना,
अपना कल्याण नहीं, वो थर्ड पैराग्राफ है, वो नहीं, वो दूसरा, वो खुशी वाला है, वो हर चीज में कल्याण ढूंढ लेंगे, उसमें नहीं जाओ अभी, रुको। ये गुणग्राही है, गुणग्राही मतलब अवगुण में भी गुण देख लेना। अगर अवगुण देखेंगे तो उसमें हलचल है, उसमें अकल्याण है। गुणग्राही अर्थात कल्याणकारी भावना, वो अपने अवगुणों में दृढ़ है, तो तुम अपने गुण में दृढ़। अवगुणों के ग्राहक नहीं, गुणों के
ग्राहक।
वो अपने अवगुणों में दृढ़ है, तुम गुणों में दृढ़ हो। ये सब सेकंड पैराग्राफ। अभी है वो खुशी, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी है बुद्धि का भोजन, खुशी शक्तिशाली बनाती है, और खुशी रहने के लिए द्रामा की क्या ढाल, द्रामा की स्मृति में रहो। तो हर सीन में कल्याण ढूंढ लेंगे,
अब कल्याण
ढूंढ लेंगे, वो हर सीन में कल्याण ढूंढ
लेंगे,
ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे।
हाँ नहीं, जो ड्रामा के ढाल पर रहेंगे वो ढूंढ लेंगे।
हाँ निकाल लेंगे। वो उस दिन का मूल्य है 87 का, कि कर्मातीत अर्थात जो नुकसान से भी फायदा ढूंढ लेंगे।
नहीं बात है वो,
नहीं वो 87
और दूसरी मूल्य
वो दूसरा। तो ये फिर उसके बाद में श्रेष्ठ स्थान पर आए हो, सर्वश्रेष्ठ भाग्य, वो दूसरा पैराग्राफ है, वो खत्म। नेक्स्ट पैराग्राफ, श्रेष्ठ स्थान पर आए, श्रेष्ठ भाग्य है ये, भाग्य रखो इसका, अटेंशन रखो। एक रस सदा वो रह सकते हैं जिसका एक में सब रस अनुभव। अगर बुद्धि यहाँ आ जाती है, खींचती है दूसरे रस, तो एक रस नहीं कहेंगे उसको, एक रस सदा एक रस की, मतलब बुद्धि कोई भी नहीं खींचे। सारा जो सुख है ना, एक्चुअली सारा सुख आत्मा में, आत्मा में ही सुख का अनुभव,
यहाँ से उतरना
है परमात्मा में, सारे रसों का अनुभव, वो रसराज है, सारे रस उसमें है। संसार के जो रस है सब तुच्छ है, बाबा ने बोला सब दह है। सच्चा सुख एक ही में, अतिंद्रिय सुख। फिर आगे, सदा अपने आप को ज्ञान सागर अनुभव करते हो, नॉलेज फुल, ज्ञान सागर अपने आप को अनुभव करना, इतनी बड़ी स्थिति है। उसके लिए बुद्धि में ज्ञान खेलते रहे, ज्ञान की बुलबुल टिकलू टिकलू करते रहे, टपकता रहे निरंतर। तो अपने आप को सदा ज्ञान सागर अनुभव करते हो, ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हो, सत्य बाप के बच्चे हो, तो सत्य कर्म करने हैं, मनसा वाचा कर्म सब तुम्हारा सत्य हो, क्योंकि तुम सतयुग में जाने वाले हो। सत्य बाप के बच्चे बन, सत्य बाप के बच्चे बन, सत्य धाम के निवासी बन, अगर कोई असत्य कर्म किया तो 100 गुना दंड धर्मराज के द्वारा मिलेगा, दाग छिप नहीं सकेगा, सबके सामने प्रत्यक्ष होगा। संडे के लास्ट, संडे के लास्ट, संडे की मुरली कर्म की गुह्य गति। बाप की महिमा बुद्धि में रखो तो समान में स्थित हो जाओगे, ये भी बोला है। फिर बाबा ने बोला यहाँ पे मुरली एंड क्या और भी कुछ है, तो पूरे मुरली का सार, एक तो समान में रहना, अपने यहाँ इसमें दो बातें हैं मुझे जो स्ट्राइक हुआ ना, जो करना है इसमें से, एक तो सुबह सुबह एक काम करना है, रात को एक काम करना है। सुबह अपने भाग्य की स्मृति रोज करना है, लिस्ट कि मैं क्यों भाग्यशाली हूँ, सुबह सुबह अमृत वेला वही टाइम पे अपने भाग्य की लिस्ट निकालना है, मन ही मन, या योग करते करते जब हम संगम योग पर पहुंचते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या क्या मिला,
भाग्य का पिटारा खुल गया,
भाग्य का पिटारा जैसे बाबा ने बोला भाग्य। और दूसरा, रात को सोने से पहले एक बार ड्रामा की जितनी पॉइंट है वो सारी याद करना, क्योंकि बाबा ने बोला ना खुशी आत्मा को शक्तिशाली बनाती है, आत्मा का भोजन है, बुद्धि का भोजन है, खुशी की खुराक है। तो सारी ड्रामा की पॉइंट एक बार रात में रिवाइज करना रोज, वो ड्रामा की सारी पॉइंट, जैसे ड्रामा कल्याणकारी है,
जो अच्छा
हर एक का, जो अच्छा, मैं अच्छा, बाप अच्छा, सब अच्छे, ड्रामा में सब कल्याणकारी है, ड्रामा रिपीट हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है, नया नया कुछ नया कुछ नहीं है, ड्रामा कल्याणकारी है
और
ड्रामा सत्य है, जो हुआ वो सत्य है। ड्रामा बाप को पसंद है तो हमें भी पसंद आना चाहिए। और एक पॉइंट कि ड्रामा में हर एक्टर
अपना अपना पार्ट,
अपना अपना पार्ट है। इस ड्रामा में हर एक्टर और निर्दोष
है, एक्यूरेट
है, निर्दोष एक्यूरेट नहीं, निर्दोष
निर्दोष,
केवल निर्दोष नहीं संपूर्ण निर्दोष
एकदम निर्दोष
एकदम निर्दोष। इस ड्रामा का हर एक्टर संपूर्ण निर्दोष है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा सत्य है, जो हो रहा है वही सत्य है, जो हुआ वही होना चाहिए था। वो निर्भय भाई बोलते हैं ना, ऐसे 10-15 ड्रामा थे, उसमें से ये ड्रामा सिलेक्ट किया गया क्योंकि सारे ड्रामों में ये सबसे बेस्ट था, इसके लिए इस ड्रामा की कोई भी सीन खराब नहीं है। समझ में आया ना? हमको क्यों खराब लगती है? क्योंकि हम उतना देखते हैं, हमारे हिसाब से देखते हैं, स्वार्थ के हिसाब से। बाबा के लिए ड्रामा सब अच्छा है, हमारे इधर सब खराब खराब हो रहा है, हमारे साथ भी कुछ कुछ हो रहा है, तो हम अपना देखते हैं। तो ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं है, सब निर्दोष है। हाँ, बाहर रह के देखना, साक्षी होके देखते हैं तो अच्छा लगे, तो ठीक लगे। हम ड्रामा के अंदर रह के देखते, देखा मेरे साथ ऐसा क्यों, वाई मी, एक किताब है इतनी बड़ी इंग्लिश में, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों खराब होता है सब, वाई मी, मैं ही क्यों,
मेरे साथ ही क्यों।
हाँ, एक बार ड्रामा की सारी पॉइंट्स रोज याद करना है। और बाबा ने बोला भाग्य की स्मृति, भाग्य की तो रोज, ड्रामा की पॉइंट
नींद
भी आएगी, नींद भी आएगी। और दूसरा ना, हमको लगता है ना दिन भर में झगड़ा संघर्ष टकराव किसी से किसी में कुछ तो होता ही,
बिंदी लग जाएगी ना फिर,
कल्याण की बिंदी, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने की बजाय कल्याण की बिंदी लगेगी, क्या क्यों नहीं होगा, फुल स्टॉप, ड्रामा मीन फुल स्टॉप, जो हुआ वही होना था, जो
हुआ
चाहे बहुत सारी हलचल भी हो और हमने उस हलचल को रुकाने की कोशिश भी की, पर अल्टीमेटली तो देखा जाए तो ड्रामा तो
कल्याण का ही
सबसे ऊपर देखा जाए, भले हमने गलत हुआ कुछ तो हमने ठीक करने की कोशिश भी की, प्रयत्न किया, नहीं हुआ वो, फिर भी अल्टीमेटली ड्रामा कल्याणकारी है, सब एक्यूरेट है, किसी का कोई दोष नहीं है, ड्रामा को नथिंग न्यू, ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद करना एक बार, नथिंग न्यू। हाँ, मतलब ये जो है ना, एक ये एक, क्योंकि बाबा ने आज बोला खुशी में अगर रहना है तो ड्रामा की ढाल चाहिए, ड्रामा की पटरी पे सुबह सुबह, हाँ,
खुशी में रहना है तो ड्रामा की ढाल चाहिए
और भाग्य की निरंतर स्मृति रहे। और समान में स्थित रहना तो हमने तो ये गिनी लिए, समान बहुत सारे हजारों समान है, योग में भी समान का अभ्यास करना है, योग भी कभी कभी ऐसा भी योग कर सकते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मुझसे शक्तियाँ चारों ओर फैल रही है, सिंपल योग, मैं विश्व कल्याण कर रही हूँ, सारे विश्व का कल्याण कर, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, अपवित्र आत्मा है, दुखी आत्मा है, अशांत आत्मा है, सबका कल्याण कर, प्रकृति को भी कर लूंगा, सबको, सबको शांति देना, अशांत, बहुत सारे ग्रुप इमर्ज करना है,
मन जो हमारा थॉट भी चलता है तो वो भी वाइब्रेशन तो बनाते रहते हैं ना,
हाँ, थॉट का कल्याण वृत्ति बनती है ना, वृत्ति का कनेक्शन डायरेक्ट वायुमंडल से है, वृत्ति से कुछ भी कर सकते हो, लास्ट संडे की मुरली थी ना, वृत्ति से तुम कुछ भी कर सकते हो, वृत्ति का डायरेक्ट कनेक्शन वायुमंडल से, हम जो भी थॉट, अगर किसी के बारे में शिवानी बहन ने एक जगह बहुत अच्छा बोला है कि अवर वाइब्रेशन रीच समबडी बिफोर अवर वर्ड्स एंड एक्शन, हमारे बोल और हमारे कर्म से पहले हमारे थॉट नहीं वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचते हैं। अभी ये मैं सुशील भाई से मिला नहीं हूँ पर मैं सोच रहा हूँ ये बहुत ऐसे ऐसे करता है, खराब है बहुत, तो ये जो है ना ये वाइब्रेशन पहले पहुंच गया, मैंने अभी बोला नहीं, मैंने अभी कुछ किया नहीं, तो अवर वाइब्रेशन रीच अदर्स बिफोर अवर थॉट्स एंड एक्शन। अगर मैं ये सोचता हूँ एक बस आई यहाँ टूरिस्ट लोगों की, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने देखा, हमने सोचा इन सब का कल्याण हो जाए, इन सब का कल्याण हो जाए, इन सबको बाबा का परिचय मिल जाए, ऐसे सिंपल एक थॉट है और छोड़ दिया, छोटा सा विचार है पर वो पहुंचेगा ना,
पहुंचेगा,
क्यों नहीं पहुंचेगा, संकल्प में शक्ति है, हमारा संकल्प वायुमंडल में जाता है, वहाँ वायुमंडल और हमारे संकल्प की रिएक्शन होती है और उसका जो प्रोडक्ट होता है वो उसका रिजल्ट होता है, होगा, संकल्प से सृष्टि रची है ब्रह्मांड ने, तो हमारा भी अमृत वेले का पहला संकल्प, लास्ट संडे की मूर्ति, अमृत वेले का पहला संकल्प दिन भर प्रभाव डालता है, संकल्प इज अ थिंग, संकल्प जो है ना वस्तु है, जैसे ये मोबाइल है ना, एक वस्तु है, इसका नाम और रूप है। जैसे ये वस्तु है वैसे संकल्प निराकार नहीं है, संकल्प भी एक वस्तु है।
लेकिन वो मेयरमेंट है,
इसके लिए लास्ट मुरली में भगवान ने बोला था अमृत वेला आदि काल है, अमृत वेला सत्व प्रधान समय, अमृत वेला सहयोग का समय, अमृत वेला वरदान का समय है। चार बात है, इसके लिए अमृत वेले का संकल्प सारे दिन भर चलता है। सबके प्रति शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इसका संबंध है एक दूसरे से। और वो जो आज ये बोला ना हरे के अवगुण वाले में से भी गुणों को उठाने, तो अवगुण में जुड़ा तुम तो कल लास्ट संडे में बोला था ना मुरली में कि सारे दिन भर में संबंध संपर्क में आते हुए चाहे कोई कितनी भी तमोगुणी सतोगुणी आत्मा है फिर भी उसके प्रति रहम भाव, अपकारी पर भी अपकारी की दृष्टि।
तो रावण जैसा नहीं होना,
हाँ रावण नहीं उससे भी ठीक। हमारी जो परीक्षा है वो वही तो होगी ना, हमारी परीक्षा तो हमारे साथ में 10 अच्छे लोग हैं जो सब अच्छा सोचते हैं, हम भी अच्छा सोचते हैं, इसमें क्या है परीक्षा। हमारे साथ ऐसे लोग हो कि जो नफरत करते हैं, हमसे घृणा करते हैं, हमको नीचे खींचते हैं, उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, कल्याण की भावना, अपकारी पर उपकार की भावना हो। बाप तुमको गुड मॉर्निंग करता है, ये तो अव्यक्त वाणी बोल दी आपने। चलो लास्ट में एक वरदान था आज का, और स्लोगन स्लोगन था उमंग उत्साह में, क्या उमंग उत्साह के पंख उड़ते रहोगे, उड़ती कला का अनुभव होगा। वरदान हिम्मत, बच्चों की बाप की मदद,
आज का वरदान था बाबा करा वो ना रहे।
हाँ वो है, तो अपने आप को जिम्मेवार मत समझो, अपने आप को जिम्मेवार नहीं समझो, ट्रस्टी समझो।
मेरा कोई काम नहीं,
मेरा को नहीं, बाप जाने, बाप 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 का काम है, बाप जाने, बाप को दे दो। डबल लाइट फरिश्ता, उड़ती कला का
माता जी, पूरा रात में ज्ञान को भर्ती कर सकते हैं, पूरा रात ज्ञान को नहीं कर सकते हैं।
ज्ञान तो ऐसा है,
योग में नींद आ सकते, ज्ञान में नींद नहीं आएगी,
ज्ञान में नींद आने का चांस नहीं है, ज्ञान में बोर होने का चांस नहीं है, ज्ञान में थकने का चांस नहीं है।
थकता कौन, इसलिए भगवान को ज्ञान नहीं थकता है, इसलिए परमात्मा को ज्ञान को
आपके योग में
है,
थकते योग में है, और उसका कारण
इसके लिए बाबा ने बोला योग को मनोरंजन बना दो,
मनोरंजन बना
दो, योग को मनोरंजन बना दो तो थकेंगे नहीं। अगर किसी को सेवा, किसी को बुलाओ कि ड्यूटी है तो नहीं जाएंगे, बोलेंगे सेवा है तो थोड़े जाएंगे, बोलेंगे खेल खेलने जा रहे हैं तो सब जाएंगे। मुरली में बाबा ने बोला है ड्यूटी बोलोगे तो कब आएंगे, सेवा बोलोगे तो थोड़े आएंगे, और खेल बोलोगे तो सारे आ जाएंगे,
और कुछ मिलने वाला तो
और तो और ज्यादा आ जाएंगे, टोली बोलोगे तो और आ जाएंगे। आज बोलो, आज इतने इतने बजे योग भट्टी रखी हुई है, गाड़ी इतनी नहीं खड़ी, आज इतने इतने बजे ज्ञान सरोवर में कल्चरल प्रोग्राम है, ये मुंबई से आने वाला है, पूरी गाड़ी भर गई है, जगह नहीं है बैठने। एक बस चली गई, दूसरी बस लगा रहे, क्योंकि मौज है ना उसमें, तो योग को भी मौज में परिवर्तन। आत्मा की प्यास ही सुख की है, अगर तुमने अमृत वेला सुख नहीं दिया तो सारे दिन भर वो किसी ना किसी को ढूंढेगी, कुछ तो बोलेगी आज खाने में ये ठीक नहीं, कुछ अच्छा बनाते आज, उसको सुख चाहिए, उसकी प्यास सुख की है, आनंद चाहिए उसको, कैसे भी करके आनंद चाहिए, वो कहीं ना कहीं भागेगा और आनंद लेगा, और एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट वो काम विकार की तरफ जाता है। अच्छा ओम शांति,
ओम शांति। तो कल प्रेजेंटेशन है,
हाँ वो फर्स्ट एड
मेडिटेशन, हमें कल फर्स्ट एड का दिखाएंगे।